रात गहरी हो चुकी थी। हवेली का हर हिस्सा जैसे नींद में डूबा हुआ। लंबे कॉरिडोर में पीली रोशनी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरों की स्थिर निगाहें और हर कदम की आवाज ऐसे गूंज रही थी मानो कोई अदृश्य परछाई पीछे पीछे चल रही हो। श्यामली के हाथों में कुछ साफ प्रेस किए हुए कपड़े थे। शकुंतला के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। इस सच से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, वो तुमको कुछ नहीं बताने वाले। दिल में उबाल था, उलझन थी और हिम्मत भी, जैसे मन ने आज फैसला कर लिया हो कि चुप नहीं रहना है। वो धीरे धीरे आर्यन के कमरे की ओर चली। दरवाजे की दरार से हल्की सी सफेद रोशनी बाहर गिर रही थी और अंदर से पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। उसने एक पल को रुककर सांस रोकी। दिल थड़थड़ा रहा था। क्या सही कर रही है? क्या यह ठीक है? लेकिन अगर वो नहीं बताएगा फिर कौन? उसने धीरे से दस्तक दी। टक टक। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जैसे कमरे के भीतर का समय ठहर गया हो। उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। आर्यन का कमरा। कमरा बड़ा था पर भरा नहीं, सरल, साफ और अजीब शांत। एक कोने में लकड़ी की बड़ी स्टडी टेबल, जहां पीली टेबल लैंप की रोशनी में किताबें, कॉपियां और कुछ पुराने नक्शे फैले हुए थे। आर्यन वहां बैठा था, काले टी शर्ट और ट्रैक पैंट में, बाल थोड़े बिखरे हुए, चेहरा किताब की रोशनी से आधा चमकता आधा साया। वो पढ़ने में इतना डूबा था कि उसे कमरे में किसी के आने का एहसास ही नहीं हुआ। श्यामली ने धीरे से कहा, आर्यन? कोई जवाब नहीं। उसने फिर कहा, आर्यन, कपड़े रखने आई हूं। उसने कपड़े अलमारी खोलकर रखने शुरू किए। दरवाजे की हल्की चरचर कमरे में गूंज उठी और वहीं वही आवाज आर्यन के ध्यान को तोड़ गई। वो चौंक कर पलटा। पहले उसकी नजर कपड़ों पर गई, फिर धीरे धीरे ऊपर उठी और रुक गई। वो हल्की गुलाबी पिंक साड़ी में थी। नाजुक मुलायम कपड़ा, बाल एक कंधे पर ढीले बंधे, कानों में छोटे मोती और चेहरे पर हल्की थकान जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसकी आंखों में हिचक थी, उलझन थी और भीतर छुपे सवालों की आंधी भी। आर्यन कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, जैसे वो अचानक किताबों, चिंता और रहस्यों से बाहर आ गया हो। फिर बहुत धीमे, जैसे शब्द खुद ब खुद होंठों पर आ गए हों, श्यामली। उसकी आवाज सामान्य नहीं थी, नरमी, हैरानी और अनकही गर्माहट से भरी। वो कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुका, निगाहें हटाने की कोशिश की पर हट नहीं पाई। और फिर अचानक उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, बहुत हल्की, बिना किसी कोशिश के। तुम जानती हो, उसने धीमे से कहा, कभी कभी कुछ खूबसूरत चीजें अचानक सामने आ जाती हैं और फिर शब्द खुद ही बन जाते हैं। श्यामली उसे देखती रह गई, हैरानी में, थोड़ी उलझन में और दिल में उठती किसी अजीब धड़कन के साथ। आर्यन ने नजरें झुकाई और एकदम मुलायम आवाज में कहा, चांदनी बनकर आई हो, रात मेरी रोशन कर गई हो, खिड़की से आती हवा भी आज तुम में ही महक गई है। श्यामली पल भर को ठिठक गई। उसके हाथों में पकड़े कपड़े हल्के से कांप गए। उसने अलमारी में कपड़े रखते हुए धीरे से कहा, तुम कविता भी लिखते हो? आर्यन मुस्कुराया, धीर, शांत और अजीब गहराई के साथ। जो दिखता है वही कह देता हूं, और अभी जो दिख रहा है उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। श्यामली एक पल उसके चेहरे को देखती रह गई। उसकी आंखों में कुछ था जो बोलने से ज्यादा सुनाई दे रहा था। कमरे में खामोशी फैल गई, सिर्फ लैंप की धीमी रोशनी, हल्की हवा की सरसराहट और दो धड़कनों की आवाज। श्यामली कपड़े रखते रखते रुक गई। उसके हाथ धीमे हो गए और नजरें अपने आप पीछे मुड़कर आर्यन से टकराई। दोनों की आंखें मिली, कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, पर उन कुछ सेकंड में जैसे सब कुछ कह दिया गया। आर्यन अचानक बहुत धीरे से कुर्सी से उठा, एकदम शांत चाल, जैसे कोई सपना चल रहा हो। वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आता गया। श्यामली ने महसूस किया, दिल और जल्दी धड़क रहा था, सांसें अटक रही थी। उसने जल्दी से कपड़े टटोलते हुए कहा, मैं बस कपड़े रख रही थी, मैं जाती हूं। पर उसके हाथ कांप गए और कपड़े उसके हाथों से फिसलकर धीरे से फर्श पर गिर पड़े। फ्रश। फर्श पर गिरने की आवाज खामोशी में बहुत तेज सुनाई दी। श्यामली झुकने वाली थी उन्हें उठाने, पर तभी आर्यन उसके बिल्कुल सामने रुक गया, इतना पास।
कि उसके सांसों की गर्माहट महसूस होने लगी। वो कुछ पल उसे देखता रहा, गहरी, अनछुई और अजीब सी नरमी के साथ। उसके होंठों से धीरे धीरे शब्द निकले, मत उठाओ, गिरने दो। शामली ने सांस रोकी, नजरें झुका नहीं पाई। रुकती हुई हवा, कमरा जैसे स्थिर हो गया। लैंप की रोशनी दोनों के चेहरे पर धीमी सुनहरी परत की तरह गिर रही थी। बाहर दूर कहीं पुरानी घड़ी ने 12 बजने की आवाज दी, ठन ठन ठन। और उसी पल शामली ने महसूस किया कि कुछ अनकहा अनदेखा इस हवा में जन्म ले चुका है। कपड़े फर्श पर पड़े रहे, शामली स्थिर, आर्यन उसके बस एक सांस की दूरी पर, और दुनिया बाहर कहीं बहुत दूर। दृश्य यहीं थम जाता है, दो धड़कनों के बीच एक अनकही शुरुआत पर। विशाल अपने कमरे में अकेला था, दरवाजा बंद, टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी और सामने खुली किताब, जिसे वो पिछले 20 मिनट से एक पेज से आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियां बेइरादा पेन की नोक को टेबल पर थपथपा रही थी और दिमाग जाने क्यों बार बार गुंजन के चेहरे पर अटक जा रहा था। पागल हूं क्या मैं, उस लड़की को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा हूं, वो खुद से बड़बड़ाया माथे पर हाथ रगड़ते हुए। ये प्यार वाला एहसास तो बिल्कुल नहीं था, ना धड़कने तेज हुई ना कोई रोमांटिक म्यूजिक बजा, पर फिर भी उसके भीतर कुछ बेचैन सा था। गुंजन की आंखों में जो सख्त सी जिद थी, उसकी आवाज में जो तड़प और चुनौती थी, वो सब जैसे दिमाग से हट नहीं रहे थे। क्यों फर्क पड़ा मुझे उसके रोने से, और क्यों बार बार उसका चेहरा याद आ रहा है। वो झुंझलाकर कुर्सी पीछे धकेलता हुआ उठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रम्या अंदर झांकते हुए बोली, भैया अगर फ्री हो तो थोड़ी पढ़ाई में हेल्प कर दो ना, कल टेस्ट है मेरा, विशाल ने बिना पलटे कड़क आवाज में कहा। नहीं रम्या, अभी नहीं, जा किसी और को परेशान कर, रम्या ने आंखें सिकोड़कर पूछा। इतना गुस्सा क्यों, अगर कोई गर्लफ्रेंड होती ना तो उसे ऐसे डांटते क्या, विशाल उसकी तरफ घूर कर बोला। चुप रहो और बाहर जाओ, समझी, रम्या मुस्कुराई जैसे किसी राज पर हाथ रख दिया हो। तो किसी की याद आ रही है भैया, कौन है वो, विशाल ने तुरंत नजरें फेर ली, पर उसकी चुप्पी ही सब कह गई। रम्या हंसती हुई बाहर निकल गई, दरवाजा बंद हुआ और कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई, पर अब खामोशी के बीच सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, गुंजन।